अच्छा, अब इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम को ले जाया गया मस्जिद अक्सा, और इसके बारे में एक रिवायत में आता है बाद में, बहुत बाद में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे, तो आपने सारे बादशाहों को लेटर्स भेजे थे, तो हरकल जो था रोम का बादशाह, उसके नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर भेजा था। तो उसने तहकीक के लिए उसने कहा कि अरब से कोई लोग अगर आए हुए हैं तो उनको लेकर आओ। तो तिजारत के लिए लोग जाहिर है वहां पे जाते थे, तो उनके अंदर अबू सुफियान भी था, अबू सुफियान और उनके साथी। ये अभी फतह मक्का से पहले की बात है, सुलह हदैबिया हो चुकी थी उसके बाद। तो ये जो काफला था ये शाम आया हुआ था, तो उनको हरकल के दरबार में पेश किया गया। उसने बहुत सारे सवालात पूछे इनसे, और अबू सुफियान की दिली ख्वाहिश ये थी कि इस मौके पर कुछ ऐसी बातें मैं कर दूं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हैसियत ना रहे इसके सामने, हरकल के सामने। लेकिन अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अपने इस इरादे से मैं कामयाबी नहीं हो रही थी, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात कहूं, और ये ना हो कि कोई ऐसी बात कह दूं कि जो झूठ निकल आए और मैं ही बादशाह की नजर से गिर जाऊं, और मेरे साथी भी मुझे झूठे होने का ताना दे, साथी भी पीछे खड़े हुए थे। तो अलबत्ता एक बात मेरे हाथ लगी, मैंने बादशाह के सामने मेराज का वाकया बयान कर दिया कि देखें देखें ये तो ये कहता है, खुद ही बादशाह को समझ आ जाएगी कि ये झूठा आदमी है, नाउजुबिल्ला। तो मैंने कहा कि मैं इनका मामला आपको बताता हूं, आप खुद मालूम कर लेंगे कि वो झूठ। रैकल ने पूछा, वो क्या वाकया है? अबू सुफियान ने कहा कि ये जो नबूवत का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक ही रात में मक्का से निकला और आपकी इस मस्जिद बैतुल मकदस में पहुंचा, और फिर इसी रात में सुबह से भी पहले पहले मक्का में वापस भी पहुंच गया। अच्छा, अब इलिया जो था वो उनका बहुत बड़ा आलिम था, उस वक्त हरकल के सरहाने पर करीब खड़ा हुआ था। उसने बयान किया, मुझे उस रात का पता है। शाह रोम उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, पूछा कि आपको कैसे वेल में और कैसे पता चला? उसने अर्ज किया कि मेरी आदत थी कि मैं रात को उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक बैतुल मकदस के सारे दरवाजे ना बंद कर, उस रात मैंने हस्बे आदत तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो सका। तो मैंने अपने टीम को, जो अपना अमला था, उन लोगों को बुलाया, उन्होंने मिलके कोशिश की, मगर वो भी उनसे भी ना बंद हुआ। और दरवाजे के जो कबाड़ थे, ये को जो जो इसकी साइड, जो दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है, वो भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा था, ऐसा मालूम होता था जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं। तो मैंने आजिज आके कारीगरों को और लोगों को बुलाया, उन्होंने देख कर कहा कि ये इन कुवाड़ों के ऊपर दरवाजे की इमारत का बोझ पड़ गया, अब सुबह से पहले इसके बंद होने की तो कोई भी तदबीर नहीं हो सकती, सुबह को हम देखेंगे कि किस तरह इसके साथ किया गया। कहते हैं मैं मजबूर होके लौट आया और दरवाजा खुला ही रह गया। सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाजे पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि दरवाजा जो मस्जिद के पास एक पत्थर है, उसकी चट्टान में कोई सुराख किया हुआ है, और ऐसा महसूस होता है यहाँ कोई जानवर बांधा गया था। उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा कि आज इस दरवाजे को अल्लाह ताला ने इसलिए बंद होने से रोका है कि कोई नबी यहाँ आने वाला था। इस रात फिर आपने हमारी मस्जिद में नमाज भी इसका मतलब पढ़ी। तो यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि वो भी इस चीज की गवाही देने से रह ना सका कि वाकई कोई अनयूजुअल बात यहाँ पे हुई है, वाकई कोई ऐसा वाकया हुआ है। और बास कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज पढ़ाई नबियों को, और बास कहते हैं कि जब आप वापस आए, मेराज से वापस आए, तब नमाज पढ़ाई। बाहर क्या जो भी सूरत हाल थी, हम देखते हैं कि ये इतनी मुबारक रात थी, बरकतों वाली रात थी, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जमा फरमाया, और अव्वल आखिर यानी आदम अलैहि सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी वहां पे जमा हुए हैं। और किस तरह जमा हुए हैं, क्या इसकी यानी रियलिटी किस तरह से थी, कैसे वो थे, वो हम कैफियत नहीं जान सकते। मगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्या रौनक होगी उस रात मस्जिद अक्सा में, जहां सितारे उतर आए। आज आपको कहते हैं ना ये लोग कि वो जी ऑस्कर अवार्ड और फलाना अवार्ड और वो पता नहीं स्टार्स जमा हुए हैं यहाँ पे, स्टार्स। ये स्टार्स नहीं है, स्टार्स वो हैं जिनको अल्लाह ने स्टार बनाया। आज वो सारे स्टार्स मस्जिद अक्सा में आए हुए थे। ना इस जमीन ने कभी पहले ऐसा वाकया देखा और ना कभी दोबारा कि इतनी बुजुर्ग हस्तियां, वो हस्तियां जो इस जमीन पे बेस्ट, अपने अपने जमाने की बेस्ट हस्तियां थी, वो इस जमीन पे उतरी नहीं थी। और सब जमा है, और जमा किस लिए हुए हैं? कोई फीस्ट करने के लिए, कोई दावत नहीं हो रही कोई उन्हें। हम तो जब भी जमा होते हैं तो हमारा तो जमा होना किस लिए होता है? खाना पीना, बस खाना शुरू, खाना चुना होता है, जबरदस्त से जबरदस्त खाने हैं, बस यही हमारे लिए एक इवेंट होता है। जो इवेंट है वो बस खाने के बगैर नहीं। यहाँ पे कोई खाना नहीं था। ये सब किस लिए जमा हुआ? ये सब के सब मिलके अल्लाह ताला के आगे झुक जाए। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे आदम भी हैं, नूह अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, मूसा, ईसा, और बड़े बड़े पैगंबर, यूनस, हूद, सालेह, लूत, कितनी बड़ी हस्तियां, वो सब जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी अल्लाह ताला की नाम को दुनिया में बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए। सब अल्लाह के पसंदीदा, फेवरेट, चुने हुए लोग, वीआईपीज, स्टार्स। ये है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री बन रही थी। क्योंकि कभी दोबारा ऐसी तकरीब कभी नहीं होनी, ना पहले कभी हुई। इतनी बड़ा इवेंट था, सब खड़े हुए और इमाम का इंतजार कर रहे हैं। और इमामत का शर्फ किसको मिला? जिब्राईल अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को इशारा किया कि आप इमामत कराएंगे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है, सब अंबिया के इमाम। अल्लाहु अकबर। तो ये इवेंट कैसा होगा कि सारे नबी वहां नमाज पढ़ रहे हैं, रात कैसी पुरसकून होगी, कितनी खामोशी, और वक्त थम गया। अल्लाह अकबर। इसीलिए मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं है, ये वो सरजमीन है जहां पे इतने अंबिया ने अपना माथा टेका। इसलिए जब कभी जाने का शर्फ हासिल हो उस जमीन पे, उस मस्जिद में, तो ये जरूर सोचिएगा। और यहां से फिर आगे जो आप देख लेना, अब ये बरकत है ना, ये कितनी बड़ी बरकत है उस जगह की। यहां से फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सीढ़ी लाई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से आगे आसमानों की तरफ गए, आसमानों की सैर। और वो भी बहुत ही दिलचस्प है, जिस वाक्य को इसरा में वो शामिल नहीं, वो मेराज में शामिल है। मेराज, ऊपर को जाना, ठीक है। अब उसके वाक्य में जो कुराने पाक में ये वाक्य है, ये सूरत नजम में है मुख्तसरन। यहाँ पे तो सिर्फ इसरा का ही है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट्स हैं इसके, इस सफर के। तो रिवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मकदस की इस मस्जिद के पास उस दरवाजे पर पहुंचे जिसे बाबे मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम, तो वहीं एक पत्थर जिसे जिब्राइल अलैहि सलाम ने अपनी उंगली लगाई तो उसमें सुराख हो गया था, वहीं बुराक को बांधा और मस्जिद पे चढ़ गए। और उसके बाद फिर वहां पे जो जमा थे उन सबको मौजन ने अजान कही, तकबीर हुई और सब मुंतजर थे कि इमामत कौन कराएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहि सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे कर दिया, तो मैंने नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुए तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, जानते भी हैं कि आपने किनको नमाज पढ़ाई है? तो मैंने कहा नहीं। फरमाया, आपके पीछे ये सब मुक्तदी अल्लाह के पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला मबूस फरमा चुका है। फिर मेरा हाथ थाम के आसमान की तरफ ले चले और फिर बयान है कि आसमान के दरवाजे खुलवाए गए, और जिस दरवाजे पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम लेकर जाते थे तो वहां पे सवाल होता था पहले कि कौन है, और जिब्राइल अलैहि सलाम बताते थे कि ये फलां फलां हैं अल्लाह के पैगंबर। तो फिर दरवाजा खोला जाता था और मरहबा कहा जाता था। आप देख लें, दुनिया में मुखालफतें हो रही हैं, दुनिया में दुश्मनियां हो रही हैं, और आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा इस्तकबाल हो रहा है। और ये इसका मतलब है कि आसमानों पर पहरे हैं, आसमानों को के दरवाजे भी हैं, आसमानों के गार्ड्स भी हैं, ये भी हमें हदीस से पता चलता है। तो पहले आसमान पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो आदम अलैहि सलाम को वहां देखा उसी हालत में जिसमें वो उस दिन थे जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था, यानी अपनी असली सूरत में। उनके सामने उनकी औलाद की रूहें पेश की जाती नेक लोगों की रूहों को देख के फरमाते हैं, पाक रूह और जिस्म भी पाक, इसे इल्लीयीन में ले जाओ। और बदकारों की रूह को देख के फरमाते हैं, खबीस रूह है, जिस्म भी खबीस है, इसे सिज्जीन में ले जाओ। एक तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, जाहिर है उनकी औलाद है, दूसरी तरफ देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज लाई गई ना आपके सामने जो सीढ़ी, तो ये वही है जिससे इब्ने आदम की रूहें चढ़ती हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और ना ऐसी देखी गई है, इसीलिए वो उसमें रिवायात में आता है कि मरने वाले की आंखें आसमान की तरफ इसीलिए चढ़ जाती हैं, वो इसी सीढ़ी को देख रहा होता है जिससे उसकी रूह ऊपर जानी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस्माइल नामी फरिश्ते से मुलाकात की जो आसमाने दुनिया का सरदार है, जिसके अंडर 70,000 फरिश्ते हैं, जिनमें से हर फरिश्ते के साथ उसके लश्करी फरिश्तों की तादाद 1 लाख है। तो वाकई अल्लाह ताला के लश्करों को वही जानता है। तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और उसके बाद आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया, और हर आसमान पर किसी न किसी पैगंबर के साथ मुलाकात की रिवायात हमें मिलती हैं, जिसके अंदर बाज में थोड़ा फर्क है, किसी में किसी का नाम है, किसी में किसी का नाम है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम का आता है तो वो पहले आसमान पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे। आपने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया मरहबा, और फरमाया आप मेरे बहुत ही अच्छे बेटे हैं। वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नहरें भी देखी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये नहरें क्या हैं, तो जवाब मिला ये नील और फुरात का आंसर है। फिर आपको आसमान में ले चले, एक और नहर देखी जिसमें लूलू और मोतियों के बाला खाने थे, जिसकी मट्टी खालिस मुश्क की थी। फरमाया ये कौन सी नहर है? फरमाया ये नहरे कौसर है। फिर इस तरह से ही आपको दूसरे आसमानों पर, फिर तीसरे पर, इसी तरह इजाजत हर आसमान पे इजाजत ली जाती रही, और इजाजत लेके उन उन जो पैगंबर उस आसमान पे होते उनसे मुलाकात होती, फिर अगले आसमान पे जाते फिर उनसे। अब ये कैसे हो रही है, वो पैगंबर वहां पे क्या कर रहे थे, ये हमारे ना डिस्कस करने की बात है ना इसके ऊपर ज्यादा सोचने की बात। जो बात बताई जा रही है ना उसको देखें और उससे सबक लें, ना कि हम यही बस सोचने पड़ जाए, अच्छा क्या हो रहे थे, वो क्यों वहां पे थे, वो करते वहां पे क्या हैं, वो क्या जिस्म समेत थे, वो क्या जिंदा हैं, वो क्या नहीं है जिंदा, क्या है, ये हमारे लिए सोचने की जरूरत नहीं। तो बस रिवायत में आता है दूसरे आसमान पे यहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है, दोनों खालाजाद भाई हैं, तीसरे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो बैतुल मामूर के साथ तकिया लगाए हुए बैठे थे। बैतुल मामूर में वो जी वो घर है अल्लाह ताला का जो आसमानों में है, और ये वो घर है जो इस बैतुल्ला जो जमीन पे है इसके ऊपर है, ठीक है। ये यानी आसमान वालों का किबला, आसमान वालों का काबा ये कह सकते हैं आप। तो वहां के मुतल्लिक फिर बताया कि हर दिन 70,000 फरिश्ते इसमें नमाज पढ़ते हैं, इसका तवाफ करते हैं, लेकिन एक दिन जो पढ़ ले नमाज तवाफ कर ले उसकी बारी फिर कयामत तक नहीं आती। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला के लश्कर कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, उसकी मखलूक कितनी है आसमानों के ऊपर। ऐसे नहीं आसमान चिरचिरा रहा होता, कितनी मखलूक है। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया, जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिसके फल मटके जैसे थे, और जिस जिसको अल्लाह ताला के अमर ने ढक रखा था। सिदरा बेरी को कहते हैं, तो बेर की तरह की, और इंतहा पे यानी वो ये मकाम इंतहाई बुलंद था। तो इतने बड़े बड़े पत्ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत को ढांक ले, इतने बड़े पत्ते थे। और वहां पे एक नहर भी जा रही थी जिसका नाम सलसबील था, और इसमें दो चश्मे थे जिस वो इसमें फूटे हुए थे, एक नहरे कौसर दूसरा नहरे रहमत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उसमें गुसल किया। फिर ये यानी बुलंद तरीन मकाम, कोई इंसान इस मकाम तक नहीं पहुंच सका जहां तक आपकी पहुंच हुई, या सातवें आसमान पे है। जो चीज भी चढ़ती है वो बस यहीं तक पहुंचती है, फिर यहां से उठाई जाती है, और जो उतरती है वो यहीं तक उतरती है अल्लाह ताला की तरफ से, फिर यहां से फरिश्ते लेते हैं। और इस दरख्त पे जो सिदरा का दरख्त था ना, इस दरख्त पे सोने की टिड्डियां छा रही थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजायबात दिखाए गए यहाँ पर कि जिनका जो इनको इमेजिन करना भी, जिनको सोचना भी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर यहां से जन्नत, फिर आगे जन्नत की तरफ ले जाया गया, जन्नत दिखाई गई नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम को। अब जन्नत की भी बहुत सारी बात आती है कि वो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या देखा, अल्लाह अकबर। और इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ पे भी जा रहे थे आसमान में, वहाँ के फरिश्ते खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल करते थे, सिवाय एक फरिश्ते के। फरमाया उसने मेरे सलाम का जवाब तो दिया लेकिन मुझे मरहबा नहीं कहा, मुझे मरहबा भी कहा लेकिन मुस्कुराए नहीं, सलाम का जवाब भी दिया मरहबा भी कहा मुस्कुराए नहीं। तो आपसे सलाम ने पूछा ये कौन है और इसकी वजह क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मालिक फरिश्ता है जो जहन्नुम का दारोगा है, अपने पैदा होने से लेके आज तक ये कभी नहीं हंसे और कयामत तक हंसेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी खुशी का यही एक बड़ा मौका था, अगर आज नहीं हंसे हैं तो फिर भी नहीं हंसेंगे। तो ये वहां पे हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वादी दिखाई गई जहां पे नहायत बुरी और भयानक मकरू आवाजें आ रही थी और सख्त बदबू भी थी। आपने पूछा तो आपको बताया गया ये जहन्नुम की आवाज है, वो कह रही है अल्लाह मुझसे अपना वादा पूरा कर और मुझे वो दे, मेरे तौक, मेरी जंजीरें, मेरे शोले, मेरी गरमाइश, मेरा थोर और लहू पीप, मेरे अजाब और सजा के सामान बहुत ज्यादा हो गए। मेरी गहराई बहुत ज्यादा है, मेरी आग बहुत तेज है, मुझे वो दे दे जिसका वादा मुझसे किया हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर मुशरिक, हर काफिर, खबीस, मुनकर, बेईमान मर्द और औरत तेरे लिए। ये सुन के वो राजी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे नमाज का भी तोहफा अता फरमाया, और अपने अर्श तले से सूरह बकरा की आखिरी आयात भी आपको अता हुई, और फिर आपको बहुत सारी और चीजें दिखाई गई, बहुत सारे लोग ऐसे एक सिंबलाइज करके दिखाए गए कि जो ये करने वाला, इसका ये अंजाम है, फलां का ये अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि एक नहर दिखाई गई जिसमें लूलू, याकूत और इसके जाम थे, और बेहतरीन खुशबू थी, और सब परिंदे थे। तो आपने पूछा कि ये परिंदे क्या हैं? तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया, हाँ, इनके खाने वाले इनसे भी अच्छे हैं, यानी ये परिंदे उनके लिए, जन्नतियों के लिए। फिर फरमाया, ये जानते हैं आप ये नहर कौन सी है? फरमाया, नहीं। तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया, ये नहरे कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की, इसमें सोने चांदी के प्याले थे जिस पे याकूत और जुमरद उस पे जड़ा हुआ था, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद था। तो आपने फरमाया, मैंने एक सोने का प्याला लेके पानी भर के पिया तो वो शहद से भी ज्यादा मीठा था और मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार था। और जब मैं उससे भी ऊपर पहुंचा तो, यानी ये वहां की बात हो रही है, सातवें आसमान की, कि जब मैं इससे ऊपर पहुंचा, सिदरा तक गए, तो वहां एक नहायत खुश रंग बादल ने मुझे आ घेरा जिसमें मुख्तलिफ रंग थे, और जिब्राईल अलैहि सलाम ने तो मुझे छोड़ दिया और मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ा। फिर आपको ये नमाजें अता हुई और ये सब आपको दिया गया। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया गया था, ये तोहफा था। तो लेकिन मूसा अलैहि सलाम ने जब फरमाया कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, आप कम कराएं कम कराएं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दफा जाते रहे, हत्ता के 5 नमाजों का तोहफा आपको दिया गया, और कहा गया कि ये 5 जो हैं ये भी 50 के बराबर हों, इनका अजर मिलेगा। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा कर चुका हूँ, उन्होंने तो इससे भी हल्का हुक्म दिया गया था, लेकिन उनसे ये भी नहीं पूरा हुआ, तो आप जाके अल्लाह ताला से और कमी की दरख्वास्त करें। तो आपने फरमाया, ए कलीमुल्ला, मैं गया आया, अब मुझे शर्म महसूस होती है। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा, फिर आप तशरीफ ले जाइए। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ईसा अलैहि सलाम से भी हुई थी, और इस तरह से ये भी रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात जन्नत में जब गए थे ना, तो वहां एक तरफ से पैरों की चाप की आवाज आई, तो आपने जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। तो आपने वापस आके बिलाल को बताया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरें भी देखी और महल भी देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महल और एक हूरों के बारे में पूछा तो बताया गया कि ये उमर की हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को आके बताया कि मुझे उमर की गैरत के वजह से मैं उस महल में नहीं गया, तो हजरत उमर रो पड़े थे कि मैं आपके ऊपर गैरत खाऊंगा। और यूसुफ अलैहि सलाम को भी देखा, उनके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतने हसीन थे जैसे जो फजीलत चांद को सितारों पे है, उस तरह इतने हसीन थे वो। नहीं, अगर बहुत कोई दुनिया में खूबसूरत तरीन भी आप इंसान देख लें तो समझ लें कि वो सितारा होगा उनके सामने, इतने वो खूबसूरत थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ रिवायात में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए थे तो तब अंबिया को नमाज पढ़ाई, बाज़ में ये है कि नहीं, जब आप गए थे तो तब नमाज पढ़ाई थी, तो वल्लाहु आलम, तो हो सकता है जब आप वापस आए हो तब पढ़ाई हो, लेकिन आप आए मस्जिद अक्सा और उसके बाद फिर वापस मस्जिद हराम। तो वापसी में कुरैशियों के एक काफिले को देखा जो गल्ला लादे जा रहा था, उसमें एक ऊंट था जिस पर एक सफेद और सियाह बोरा था। जब आप उसके करीब से गुजरे तो वो जैसे होता है ना, जानवर बिदक जाता है, तो बिदक गया और मुड़ गया और गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सुबह हुई तो आपने इस मेराज का जिक्र लोगों से किया। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे काबतुल्लाह के साथ कि अबू जहल आया और उसने कहा कि और कोई नई बात है, उसने तो मजाक से किया, और कोई नई बात है तो सुनाओ। तो आप ने फरमाया कि हाँ आज तो एक बहुत ही अजीब वाक्या हुआ, और वो ये कि इस तरह बताया कि मैं ऐसे गया था और एक रात में ही वापस आया। उसने कहा ठहरो ठहरो, ये बात मैं औरों को बुला लूँ, उनको भी बताओगे उनके सामने भी? आप ने फरमाया हाँ, वो अल्लाह ताला ने देखे उसको बना दिया, एक फासिक फाजिर से भी अल्लाह अपना काम ले सकता है, अल्लाह ताला ने उसको जरिया बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को जाके बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही भागता फिरा और लोगों देखो देखो ये कैसी आज अजीब बात कर रहे हैं, लोगों इधर आओ इनकी बात सुनो, लोगों इधर आओ इनकी बात सुनो। अल्लाह ताला इस दुनिया में चाहे तो किसी फासिक से भी अपने दीन का काम ले सकता है। आज बहुत सारे फासिक फाजिर हैं जो इस दीन इस्लाम के बारे में प्रोपोगंडा करते हैं, और उनके प्रोपोगंडा से ही वो दीन आगे से आगे पहुंच रहा है, जिसको इस्लाम का पता भी नहीं था वो भी ये जान गया कि इस्लाम एक मजहब। तो उसने जाके लोगों को जमा किया और उसने अबू बकर सिद्दीक के पास जाके कहा कि आज तो देख लो तुम्हारे पैगंबर क्या कहते हैं, कि वो आज एक ही रात में महीने भर के फासले के मकाम तक होके वापिस भी आ गए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या वाकई आपने ये फरमाया है? उसने कहा हाँ। तो एक तरद्दुद भी नहीं, फरमाया आप सच्ची हैं, हम तो इससे भी बड़ी बात को सच्चा मानते हैं जो आपने कही है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से खबरें पहुंचती हैं उन तक, आन की आन में खबरें पहुंच जाती हैं, हम तो इतनी बड़ी बात मान जाते हैं, तो ये क्या मानना हमारे लिए मुश्किल। और इसी वजह से आपको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लकब मिला। तो उन्होंने फिर पूछा मुशरिकीन ने कि आप अपनी सच्चाई की कोई अलामत पेश करें, तो आपने फरमाया हाँ मैंने रास्ते में फलां फलां जगह कुरैश का एक काफला देखा था, उनका एक ऊंट था जिसपे इस तरह दो बोरे थे, वो मुझे देख के बिदक गया, घूमा और चक्कर खा के गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई है। जब वो काफला आया तो लोगों ने पूछा कि रास्ते में कोई नई बात तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ जी फलां फलां हमारा ऊंट इस तरह से गिर गया और ऐसे हो। तो देखें ये बात उनको पता चल गई लेकिन फिर भी मानने से इनकार, फिर भी इस चीज के ऊपर तरद्दुद। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछते हैं, आप वहां के बारे में बताएं कि वहां के कितने, आप कहते हैं ना वहां पे मस्जिद अक्सा होके आए, वहां के कितने दरवाजे हैं, वहां के कितनी ये सब हैं, ये आप हमें बताएं, तब हम माने के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जाके वहां के दरवाजे थोड़ी गिने या वहां की चीजें थोड़ी, इंसान कहीं जाता है तो वहां गिनता थोड़ी है कि कितने हैं कैसे हैं क्या है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको कर दिया, आपकी आंखों के सामने आप देखते जाते थे और बयान करते जाते थे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पूरी जो जैसे वहां की सारी थी बातें वो सारी बयान कर दी इसको देख देख के, लेकिन वो लोग फिर भी ना माने। अब आप रिटाई और हट धर्मी को तो नहीं कोई इलाज कर सकते ना, कि अगर कोई इंसान तुल गया है कि नहीं मानना तो फिर वो नहीं मानेगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी वहां का सफर नहीं किया था, कभी वहां गए नहीं थे, वैसे आम हालात में कभी नहीं गए थे, तो सोचने की बात ये थी कि ये कैसे ये बयान कर सकती हैं। फिर इस तरह से ये पूरा वाकया हुआ और इससे मुखालफत का एक तूफान खड़ा हो गया आपके सामने, और बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इसका शिकार हो गए। एक अहम और बात भी है कि इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम को भी अपनी असली सूरत में देखा, कि उनके 600 पार थे असली सूरत में, एक दफा दुनिया में भी देखा हुआ था लेकिन वहां पे भी फिर देखा। तो ये वाकया मेराज, इसरा वल मेराज की कुछ तफसील थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बरकत दी है इसको और इसकी इर्द गिर्द को, और अल्लाह ताला ने यह सफर क्यों कराया, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं, अपनी निशानियां दिखाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निशानियां देखें और आगे लोगों तक बयान करें। तो मस्जिद अक्सा इस जगह को अल्लाह ताला ने बरकत दी भी है और इसके इर्द गिर्द वाले को, और यही वो मस्जिद है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे नमाज पढ़ने का अजर 1,000 नमाजों के बराबर है। और ये भी कि 3 मस्जिदों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके लिए सफर करना की इजाजत है, सफर किया जा सकता है, एक मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सर, मस्जिद नबी। बाकी इसके अलावा किसी जगह को मुकद्दस समझ के कि ये मस्जिद बड़ी मुकद्दस है, हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अजर मिलेगा, ऐसा नहीं है। और इस इसरा का मकसद एक और भी पता चलता है, मस्जिद अक्सा देखें एक यहूदियों के लिए एक बड़ा मकाम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वहां पे ले जाया गया तो असल में अब बता दिया गया कि अब यहूदी उस मकाम से माजूल कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये मनसब मिल गया है, उनका किबला था ना ये। अब आप लोग हट गए और अब ये शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिली है कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। असल में हमारे चुनने के और हमारे किसी तोहफा देने के और हमारे मेहमानी के डिफरेंट चीजें हैं, और अल्लाह ताला के हाँ देखें आप सोचेंगे कि नमाज एक तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी आयत तोहफा, जो इस उम्मत में शिर्क नहीं करेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी, ये तोहफा। तो अल्लाह ताला के हाँ तोहफे डिफरेंट तरह के हैं, और एजाज भी डिफरेंट तरह के हैं। हम कहते हैं एजाज ये होता है कि पैसे बहुत सारे मिल जाए, ये एजाज है, ये शान है कि अल्लाह ताला चुन ले जिस पे अल्लाह फखर करे। तो अल्लाह ताला के हाँ अब उम्मते मुस्लिमा वो ग्रो, वो उम्मत है जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। पहले यहूदी थे जिनको चुना गया था। अल्लाह ताला ने ये आयात, ये साइंस दिखाए, इन्नहु वस्समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। यानी जितना सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से निकले वापस आए सब अल्लाह ताला की नजर में भी है, वही देखने वाला वही सुनने वाला। तो ये आयत हमारे गैब पर ईमान का इम्तिहान है, क्योंकि अगर हमारा वाकई गैब पर ईमान है और इस पर ईमान है कि अल्लाह ताला की जात सुबहान है और अला कुल्ली शेई इन कदीर है, तो फिर हम इस पर ईमान रख सकते हैं इस आयत पर। और अगर ऐसे में कहीं कोई खराबी है, कहीं कोई मसला है, तो फिर अक्ल कहेगी कि हाय इतने में तो जहाज में भी जाएंगे तो नहीं पहुंच सकते, इतने में तो ऐसे नहीं हो सकता, कौन सी वो सवारी थी, कैसे हो गया, रॉकेट में भी चले जाए तो तब भी नहीं ऊपर इतनी जा सकते, और कैसे एक इंसान जिस्म के साथ, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उस रब के लिए जो मोमिनों की रूहों को आसमान तक ले जा सकता है, तो जिस्म के साथ भी इंसानों को आसमान तक लेके जा सकता है। इसलिए इससे हम ईमान को भी अपने चेक कर सकते हैं कि हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान कितना है। और अब इसके बाद, इस वाक्य के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया और तमाम मजाहिब वालों के लिए आप नबी बन गए, ये सब की कयादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो ईसाई, यहूदी या जो भी किसी और नबी को मानने वाला था उसको अब आपकी तरफ ही रुजू करना चाहिए, अब कयामत तक के लिए आपकी ही नबुव्वत है। ये अलामत है ना, देखिए जो आपने इमामत कराई, सारी पिछली शरीयतें अब आपकी शरीयत से कैंसल हो गई, क्योंकि आप इमाम है सबके। जिसने आपको नहीं माना उसने समझे अपने नबी को भी नहीं माना। तो वो चीज जो इंसान सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.